आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th के साइंस का 10th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे फटाफट से कि इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये टॉपिक शुरू किया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बहुत सारे फिनोमेनास आपको आपके आसपास देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कभी अगर साफ पानी में देखें तो आपको जो बेस होता है वो उठा हुआ दिखता है। अगर आप किसी तालाब में देखते हैं या फिर किसी पोखरे में देखते हैं, पॉन्ड में देखते हैं, तो उसमें अगर पानी बिल्कुल क्लियर है, अगर उस बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट पानी है, तो आप उसका जो सतह है अगर उसे देखें तो वो आपको उठी हुई दिखती है, यानी कि गहराई कम लगती है जितनी हकीकत में है, उससे कम आपको गहराई अपियर होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में एक एक्टिविटी की है जिसमें आपने कांच के ग्लास में एक पेंसिल रखी थी और उसमें पानी डालने से आपने ये देखा था कि वो पॉइंट जहां पर एयर और वाटर आपस में अलग हो रहे हैं, वहां पर आपको पेंसिल बेंड होती हुई अपियर होती है। तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन में आपको जो पॉइंट नोट करना है वो ये है कि जब भी कभी लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू दी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो उससे क्या होता है कि जो लाइट की पाथ है वो बेंड हो जाती है। वो किसी भी डायरेक्शन में बेंड हो सकती है। वो बेंड होने का क्राइटेरिया क्या है वो हम आज चेक करेंगे कि उसकी डायरेक्शन में चेंज आता तो है, लेकिन किस तरीके से आता है। तो यहाँ पर आप लोग पेज नंबर 172 पर देख सकते हैं, आपको डेफिनेशन दी गई है कि जब भी कभी लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो उसमें क्या होता है कि प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आता है, लाइट की पाथ में चेंज आता है, डायरेक्शन में बदलाव आता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड हमने कुछ एक्टिविटीज की थी, एक्टिविटी 10.7, 10.8 और 10.9। ये बहुत इजी एक्टिविटीज है जिनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आप लोगों को ये आना चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आना चाहिए। बाकी इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसका फॉर्मूला हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में बेसिकली हमने पूरी एक्टिविटी डिटेल में डिस्कस की थी, एक्टिविटी 10.10। इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम ग्लास स्लैब रखते हैं, फिर एक साइड पर हम कुछ कील लगाते हैं, आल्पिन्स लगाते हैं। तो ग्लास स्लैब के एक साइड पर दो साइड्स होती है, ऑपोजिट साइड्स फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस करती हुई दो साइड्स होती हैं। तो एक साइड की तरफ हम लोग दो आल्पिन्स लगाते हैं, उनको ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और उसकी इमेज दूसरी साइड देखते हैं, जिधर उसकी इमेज दिखती है वहां पर भी दो आल्पिन्स लगाते हैं, उसको ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोनों ऑपोजिट फेसेस के एजेस पर, उसके बाद एंगल चेक करते हैं, जिस एंगल पर लाइट पड़ती है पहले वाले एज पर, एज ए बी पर, आप लोग पेज नंबर 173 पर देख सकते हैं, एज ए बी पर जब लाइट पड़ती है, इंसिडेंट रे पड़ती है, तो एंगल जो वो बना रही है विथ नॉर्मल टू द सरफेस, वो एंगल क्या कहलाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है। साथ ही में जैसे ही इंसिडेंट लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी पाथ डेविएट हो जाती है, उसकी पाथ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो लाइट है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है और इस केस में उसकी पाथ चेंज हो रही है, तो उसकी एंगल भी चेंज हो रही है जो वो बनाती है विथ नॉर्मल टू द सरफेस। और यहाँ पर जो एंगल वो बना रही है ग्लास के अंदर एंटर करने के बाद, वो रिफ्रैक्शन का एंगल कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। उसके बाद दूसरे वाले एज पे, एज सी डी पे, ये लाइट जो है ये बाहर निकल रही है, एज सी डी से ही बाहर निकल रही है, इसीलिए जो रे पड़ रही है सी डी के ऊपर, उस रे को हम क्या कहेंगे, एमर्जेंट रे कहेंगे, यानी कि एमर्ज होती हुई रे। तो वो लाइट या फिर वो रे जो पड़ रही है एज सी डी पर, वो एमर्जेंट रे कहलाएगी। और जो एंगल वो बना रही है विथ नॉर्मल टू द सरफेस, दैट एंगल इज नोन एज एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो फिर से उसके पाथ में कुछ चेंज आएगा और इस बार वो कैसे मूव कर रही है, इस बार वो ग्लास से एयर में आ रही है, तो यहाँ पर भी उसका रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, तो यहाँ पर जो एंगल आर टू है दैट इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इतनी बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे और देखेंगे कि जो ये बेंडिंग हो रही है ये बेंडिंग किस डायरेक्शन में होती है, ये चेक करने का क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे आप ध्यान रखें कि जब भी कभी एक लाइट ट्रेवल करती है और वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आ रही है तो उसके पाथ में डेविएशन होगा, ये जो है फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब यहाँ पर आप चेक करें कि जब भी कभी लाइट एयर यानी कि एक रेयरर मीडियम से, एयर को रेयरर मीडियम कह रहे हैं, रेयर यानी कि ऐसा जिसका घनत्व कम है, अब घनत्व हम किस रिस्पेक्ट में बात करें ये भी हम आज की क्लास में बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयरर मीडियम यहाँ पर एयर का काम कर रही है और डेंसर मीडियम जो है वो ग्लास है, तो यहाँ पर लाइट जब एच ए बी पर पड़ती है तो वो एयर से ग्लास में आ रही है, यानी कि रेयरर मीडियम विच इज एयर से ये ग्लास में आ रही है विच इज द डेंसर मीडियम। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उस केस में जो एंगल वो बनाती है विथ नॉर्मल टू द सरफेस वो एंगल जो है वो छोटा हो जाता है। अब अगर एंगल को छोटा करना है विच द रे इज मेकिंग विथ नॉर्मल टू द सरफेस तो उसके लिए लाइट को टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा जो रे पड़ रही थी एज ए बी पर उसकी डायरेक्शन तो ई एफ ओ वाली लाइन पर थी, लेकिन जैसे ही वो ग्लास के अंदर एंटर करती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल और एंगल जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, एंगल छोटी हो जाती है। तो जब भी कभी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयरर मीडियम, वन रेयरर मीडियम टू वन डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में आते ही उसकी एंगल जो वो बना रही है विथ नॉर्मल टू द सरफेस इट डिक्रीजेस और इसी वजह से लाइट शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको पूछते हैं कि किस सिचुएशन में टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, आप इसे रिमेम्बर कर ले। आपको ट्रिक भी बता दूंगी मैं, जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको एक मैं बता भी दूंगी कि क्या आसान तरीका है याद करने का, तो आप लोग वो अप्लाई करके भी याद कर सकते हैं। उसके बाद ये तो एक सिचुएशन हो गई, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन डेंसर मीडियम टू अनदर रेयरर मीडियम, तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयरर मीडियम में आती है तो जो एंगल ये नॉर्मल के साथ पहले बना रही थी उसके कंपैरिजन में एंगल बनाने की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब जब एंगल को बढ़ाना होगा तो रे को यानी कि लाइट को डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एज सी डी पर ये वाली बात अप्लाई होती है, जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन डेंसर मीडियम टू अनदर रेयरर मीडियम। तो यहाँ पर लाइट ने क्या किया, जैसे ही वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आई तो इसने अपना एंगल बढ़ा दिया विच इज द रिफ्रैक्टिव एंगल, जो दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव एंगल है आर टू, इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू आई टू। आई टू इज एंगल ऑफ इमरजेंस, वो लाइट यानी कि जो रे है वो बना रही है व्हेन वो पड़ती है एज सी डी पर, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। इससे ज्यादा वैल्यू की एंगल लाइट तब बनाती है व्हेन इट इज कमिंग आउट फ्रॉम ग्लास टू द एयर, ग्लास से एयर में जब आती है तब ये लाइट एक एंगल बनाती है विथ नॉर्मल टू द सरफेस एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर टू, और यहाँ पर जो ये आर टू है इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू आई टू। और ऐसा इसलिए है कि व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन डेंसर मीडियम टू अनदर रेयरर मीडियम तो इस केस में जो एंगल वो नॉर्मल के साथ बनाएगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसी वजह से लाइट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये है बेंडिंग होने का क्राइटेरिया जो हम अभी पढ़ना चाह रहे थे कि बेंडिंग तो होती है, लाइट अपना रास्ता तो बदलती है, लेकिन बदलने का क्या क्राइटेरिया है, क्या ध्यान में रखना चाहिए हमें जब हम ये जानना चाहें कि लाइट ने अपना रास्ता किस तरीके से बदला है व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यही वो क्राइटेरिया है कि जब भी कभी लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल डिक्रीज करता है। जब भी कभी लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन डेंसर मीडियम टू अनदर रेयरर मीडियम तो इस केस में एंगल इंक्रीज करता है एंड लाइट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले केस में टूवर्ड्स द नॉर्मल, दूसरे केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस केस में टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है, किस केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो ये दोनों ही सिचुएशंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये तो हो गई रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक बात। अब दूसरी बात, आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि जो लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट है, एज ए बी के ऊपर ई एफ ओ वाली लाइन जो है, ये लाइन इंसिडेंट रे की लाइन बता रही है। जो आपने ड्रॉ की है ई एफ ओ वाली लाइन एज ए बी के ऊपर, ये बेसिकली इंसिडेंट रे की लाइन आपने बनाई है। अब इसको आप एक्सटेंड करते हैं डॉटेड लाइन से और एज सी डी को क्रॉस कराते हैं। तो ये आपने डॉटेड लाइन एक बनाई हुई है, तो एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इमरजेंस का लाइट भी है, ऐसी लाइट जो इमर्ज हो रही है, कहाँ से, एज सी डी से इमर्ज हो रही है। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन इमर्ज होने वाली लाइट के लिए भी बनाई है और वो लाइन कौन सी है, जी एच ओ डैश। तो इस तरीके से आपने एक लाइन बनाई है जो कि रिप्रेजेंट करेगी किस तरीके से इमरजेंस की लाइट जो है वो डायरेक्शन उसका क्या है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो इमर्ज होने वाली लाइट का डायरेक्शन बताया गया है स्ट्रेट लाइन से जी एच ओ डैश से, इसकी जो लाइन है ये पैरेलल है उस लाइन के जो लाइट की डायरेक्शन बता रही है जब लाइट इंसिडेंट होती है ऑन एज ए बी। तो आपने एक लाइन बनाई हुई है ई एफ ओ और इसको एक्सटेंड किया है पी तक, तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, वो कौन सी है, वो जी एच ओ डैश वाली लाइन है। तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों है, पैरेलल ये इसलिए है क्योंकि जो लाइट इंसिडेंट रे है जब ये पड़ती है एज ए बी के ऊपर, फिर एयर से ये ग्लास में एंटर करती है, जैसे ही एंटर करती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर जो बेंड होने का एक्सटेंट है, यानी कि कितनी बेंडिंग हुई है, ये वैल्यू जो है ये इक्वल है और ऑपोजिट है टू द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग बेंडिंग इन द नेक्स्ट सिचुएशन। दूसरी वाले सिचुएशन जो है उसमें जो बेंडिंग की एक्सटेंट है, कितनी बेंडिंग हुई है दूसरे वाले सिचुएशन में, वो उसकी वैल्यू सेम होती है पहले वाले सिचुएशन के बेंडिंग के, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो विपरीत होता है। क्योंकि पहले वाले केस में तो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई थी, दूसरे वाले केस में बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई थी। जब एज ए बी पर इंसिडेंट लाइट पड़ी थी तो वहां से एंटर करने पर एयर से ग्लास में टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुई थी, लेकिन जैसे ही इमरजेंट रे एज सी डी पर पड़ी थी और ग्लास से एयर में आ रही थी तो उसकी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई। तो बेंडिंग का नेचर जो है वो विपरीत है, ऑपोजिट है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग जो है वो सेम है दोनों ही सिचुएशंस में। इसी वजह से आप लोगों को इंसिडेंट रे की जो लाइट है वो पैरेलल दिखाई गई है इमरजेंट रे की लाइट के, दोनों लाइट की डायरेक्शंस आपको दिखाई हैं और वो पैरेलल है एक दूसरे के। बस यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा वो ये दिख रहा होगा कि शिफ्टिंग हो गई है, पैरेलल तो है लेकिन इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होनी चाहिए थी ओरिजिनल, उससे कंपेयर करें इमरजेंट रे की डायरेक्शन के तो हम देखेंगे कि शिफ्ट हो गया है, इमरजेंट रे जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है और ये जो साइड में शिफ्ट हो गई है लाइट, इमरजेंट रे वाली लाइट शिफ्ट इसलिए हो गई है क्योंकि आपने बेसिकली लाइट को अलग अलग मीडियम से ट्रेवल करवाया है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही लाइट की पाथ जो है वो साइड में शिफ्ट हो गई है और दूसरा कारण ये है कि आपने लाइट को ऑब्लिकली ट्रेवल करवाया है, कुछ एंगल बनवा करके आपने ट्रेवल करवाया है। जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आ रही है तो वो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ कुछ एंगल बना करके आ रही है, तिरछी आ रही है। अगर आप परपेंडिकुलर डाल देते, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर कर देते आप मीडियम के लाइट को, तो उसमें क्या होता कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन आपको दिखाई नहीं देता। सपोज करो कि आपने एज ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन पड़वा दी होती तो उस केस में आपको रिफ्रैक्शन की फिनोमिना नहीं दिखाई देती। अगर आपको रिफ्रैक्शन की फिनोमिना देखनी है तो उसके लिए आवश्यक है कि आप जो लाइट है उसको ऑब्लिकली पड़वाएं, ऑब्लिक होनी चाहिए उसकी डायरेक्शन जब भी वो किसी मीडियम पर पड़ती है, तो वो मीडियम के साथ कुछ एंगल पर पड़नी चाहिए। तो आप लोगों को रिफ्रैक्शन सारा समझ में आ गया। अब देखो रिफ्रैक्शन होता इसलिए है क्योंकि जब भी कभी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड में अंतर आता है। रेयरर मीडियम में उसकी स्पीड ज्यादा रहती है और डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम रहती है। तो लाइट की स्पीड में अंतर आने की वजह से ही आप लोगों को रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखने को मिलता है। व्हेनेवर लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम तो उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर होने की वजह से उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें वैल्यू में अंतर आता है। इसी वजह से आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना दिखाई देता है। एक्सपेरिमेंट करने से साइंटिस्टों ने पता लगाया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो कुछ लॉज को फॉलो करता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन के जो फिनोमिना होती है वो भी सर्टन लॉज पर बेस्ड होती है। सिमिलरली रिफ्रैक्शन की जो फिनोमिना है वो भी सर्टन लॉज पर बेस्ड है, तो उन लॉज को जरा देख लेते हैं। पहली लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहले जैसा ही रिफ्लेक्शन के जैसा लॉ था, तो जैसे रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के कुछ लॉज होते हैं तो रिफ्रैक्शन के भी ये लॉज हैं। और ऐसे ही जैसे आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था कि एक पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, और एक ही पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे पड़ती है, रिफ्लेक्टेड रे वहां से इमर्ज हो रही है, बाहर को जा रही है रिफ्लेक्ट होकर के, और वहां पर नॉर्मल टू द सर्फेस है, तो ये सारे के सारे जो आप बनाते हैं रेज बनाते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सर्फेस, ये सेम प्लेन पर होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल टू द सर्फेस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसके बाद ये भी एक पॉइंट पर ही हो रहा होता है, जो जिस तरीके से आपने रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में पढ़ा है लॉ, वैसा ही मिलता जुलता ये पहला लॉ है। उसके बाद दूसरा लॉ ये है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज ट्रू फॉर एंगल बिटवीन 0 and 90 degrees। एंड हियर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो लॉ है वो होगा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड हियर दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दिया गया कि जब भी कभी आप साइन आई बाय साइन आर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, और ये जो कॉन्स्टेंट है ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो जहां पर एक आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि आप इधर देखिए पेज नंबर आप 173 पर आ जाओ और यहाँ पर आप फिगर 10.10 देखो, एज ए बी के ऊपर इंसिडेंट रे पड़ रही है और ये इंसिडेंट रे जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है नॉर्मल के साथ। व्हेन इट इज एंटरिंग एज ए बी पर जब ये एंटर हो रही है तो उस वक्त ये एक एंगल बना रही है विच इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद जैसे ही इसने ट्रेवल किया फ्रॉम एयर इन टू द ग्लास तो उस वक्त इसने एक एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, एंड दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो होगा साइन लेकर के, साइन आई बाय साइन आर, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उससे कुछ वैल्यू आएगी विच इज कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट किन चीजों के लिए है? वो कॉन्स्टेंट है दो मीडिया जो आपने यूज किए हैं, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम और दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर आप ये मीडियम्स चेंज करते हैं तो आपकी कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगी, यानी कि आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो चेंज करती है अगर आप मीडियम चेंज करते हैं। साथ ही में जो आपकी कॉन्स्टेंट की वैल्यू है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो ये वैल्यू है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द लाइट विच यू हैव यूज. तो जो आपने कलर यूज किया है लाइट का, उस पर भी ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है. तो ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से समझेंगे. तो यहाँ पर आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अब पढ़ना है. और ये भी याद रखें आप लोग कि जो पेज नंबर 174 पर ये दो लॉज दिए गए हैं, ये भी आपको आने चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं. तो ये आप लोग अच्छे से रिमेम्बर कर लें. उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं. आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट रिफ्रैक्शन फिनोमेना. रिफ्रैक्शन के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया है कि रिफ्रैक्शन में बेसिकली व्हाट हैपेंस इज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेनेवर इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू द अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. और वो जो मोशन है वो किस तरीके का होना चाहिए, वो ऑब्लिक होना चाहिए. यानी कि जब भी कभी लाइट ऑब्लिकली पड़ती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम और दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करती हुई लाइन पर, तो ऐसे में क्या होता है कि उसके पाथ में कुछ डेविएशन आता है और यही रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है. और ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट है उसकी स्पीड की वैल्यू अलग होती है इन अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम्स. और यहाँ पर जो लाइट की स्पीड की वैल्यू है इन वैक्यूम और एयर, ये नियरली हम सेम लेते हैं और इसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. तो लाइट की वैल्यू जो है स्पीड की, वो 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है जब भी कभी या तो ये वैक्यूम में ट्रेवल करे या फिर ये एयर में ट्रेवल करे. एयर में हल्की सी कम होती है लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली सेम ले लेते हैं. तो आप लोगों को ये हमेशा याद रहना चाहिए कि लाइट की स्पीड की वैल्यू जो होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इन वैक्यूम एंड इन एयर एज वेल. अब ये जो लाइट की स्पीड की वैल्यू है, इट चेंजेस व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो एयर में तो इसकी जो स्पीड की वैल्यू है वो 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है, लेकिन जैसे ही ये किसी और मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड की वैल्यू चेंज हो जाती है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया गया है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक वैल्यू है. द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया. अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए आपको दो मीडियम्स की जरूरत पड़ेगी. एटलीस्ट दो आपको चाहिए ही होंगे, तभी आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगा सकते हैं. क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू है जिसे हम दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तुलना में, कंपैरिजन में पता लगाते हैं. कभी भी बगैर कंपैरिजन किए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बता सकते. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप तभी बताएंगे जब आप दो मीडियम्स को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं आप? मान लो कि आप लिखना चाहते हैं, पहला मीडियम आपने लिया हुआ है एयर और दूसरा मीडियम आपने लिया हुआ है ग्लास. और यहाँ पर आप बेसिकली लिखना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन. तो ऐसे में आप जो लिखते हैं वो आप स्मॉल एन से या फिर म्यू से, म्यू भी होता है एक वैल्यू, एक सिंबल होता है म्यू, इसको भी यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए. आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि किस तरीके का दिखता है. यू के जैसा दिखता है, स्मॉल यू के जैसा म्यू दिखता है, म्यू कहते हैं इसे. और लिखने में स्मॉल यू के जैसा होता है, इससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं. या फिर यहाँ पर आप लोगों के बुक में स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया गया है. तो अगर आप लिखना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, तो आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे स्मॉल एन और उसके नीचे टू वन लिखेंगे. टू पहले आ रहा है तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, आप ये लिख रहे हैं. जब भी कभी पहला वाला जो होता है उसको हम देखते हैं और दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू पता लगा रहे हैं. तो यहाँ पर एन टू वन, 21 नहीं है ये, एन टू वन है. पेज नंबर 174 पर आप देखो, यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन 10.5 ब्लू कलर से दिखाया गया है. N21 इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसे 21 नहीं पढ़ेंगे, N21 पढ़ेंगे. और जब पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, और इसकी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. तो ये बेसिकली मेथड है, स्पीड्स को कंपेयर करके ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाते हैं ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। सिमिलरली अगर आपको पता लगाना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो ऐसे में आपको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको एन वन टू लिखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को इक्वेशन 10.6 में दिखाया गया है, ये भी ब्लू कलर से आप लोगों को दिखाया गया है। तो आप अगर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो इस तरीके से आप लोगों को स्पीड्स का रेशियो निकालना होता है, और आप स्पीड्स का रेशियो निकाल करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। यहाँ पर मैं आपको ये याद रखने का आसान एक तरीका बता सकती हूँ कि जब भी कभी आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको सभी जितने भी मीडियम्स है उन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल करके पहले से ही रखा गया है। इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज जो है वो आप लोग को कहीं पर भी मिल जाएंगी, एक्सपेरिमेंट की जो बुक्स होती है उसमें मिल जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम बताना है, तो वहां पर आप लोगों को पहले से ही उन दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर दिए रहेंगे, जो कि कांस्टेंट होते हैं। अब आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको एक प्रोडक्ट है जिसे कांस्टेंट रखना होता है। अब ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रखना होता है आपको, और आपको किस चीज का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रखना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम और उसका स्पीड, इन दोनों के आपको प्रोडक्ट को यानी कि मल्टीप्लीकेशन को कांस्टेंट रखना होता है। तो मान लो कि आप पता लगाना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, पेज नंबर 174 पर जो इक्वेशन 10.5 लिखी है, इसको अगर मान लो आप रेशो याद नहीं कर पाते कि पहला कौन सा आ रहा है दूसरा कौन सा आ रहा है, तो इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक बहुत आसान तरीका है। आप क्या करें कि आपको जो वैल्यू दी रहती है पहले से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कांस्टेंट होती है। आप लोगों को यहाँ पर आप पेज नंबर 175 पर देख भी सकते हैं, आप लोगों को एक टेबल दी गई है, टेबल 10.3, इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज दी हैं अलग अलग मीडियम्स की, और ये विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाली गई है, तो ये कांस्टेंट आपको दी हुई रहती है, गिवन होती है क्वेश्चन में। अब आपसे पूछेंगे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, जो कि दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज है और दोनों विद रिस्पेक्ट टू एयर ऑलरेडी निकाली गई है, तो ऐसे में आपको बेसिकली क्या करना है कि एक मीडियम जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसकी स्पीड उस मीडियम में क्या है ये भी आपको दी रहेगी, और आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इक्वल टू कर देंगे दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसकी स्पीड जो उस मीडियम में है। तो आपको बेसिकली लाइट की स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और दोनों मीडियम्स के लिए इसको आपस में इक्वल कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे थे कि हम यहाँ पर क्या देखना चाहते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के पता होने चाहिए, मीडियम टू का भी और मीडियम वन का भी। तो यहाँ पर मान लो कि मीडियम वन एयर की जगह कुछ और है, तो इसमें क्या होगा कि आपको दूसरे वाले मीडियम का भी दिया रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, और पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं। साथ में आप लोगों को लाइट की स्पीड्स भी दी रहेंगी इन दोनों ही मीडियम्स के अंदर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियम टू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको इक्वल कर देंगे दूसरे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसकी जो लाइट की स्पीड है उस मीडियम में, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वल कर देंगे दोनों ही मीडियम्स के लिए। उसके बाद मान लो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू पता लगाना था, तो इसके लिए आपको बाकी सारी चीजें जो बाकी सारी वैल्यूज है उसको एक साइड कर देना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू को एक साइड रखना है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं तो आप एन टू से रिप्रेजेंट करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू को, और एन वन से रिप्रेजेंट करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन को, वी वन से आप रिप्रेजेंट करिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, और वी टू से आप रिप्रेजेंट करिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड को मल्टीप्लाई करना है दोनों ही मीडियम्स के लिए। तो n2 into v2 is equal to n1 into v1, ऐसे आप लिखेंगे। और ये आपने क्या लिखा है, बेसिकली आपने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का, साथ में आपने ये लिखा है कि जो स्पीड है लाइट की उस मीडियम में, इसको आपने बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया है विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो आपने बेसिकली n2 into v2 is equals to n1 into v1 ऐसे लिखा है, और आपको बेसिकली पता लगाना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को एक साइड रखिए और बाकी सारी वैल्यूज जो है उसको दूसरी साइड कर दीजिए। तो ऐसे में आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा n2 is equals to n1 v1 upon v2। बेसिकली आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही की है, ज्यादा इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिक्स इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो आपने बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम और उस मीडियम के अंदर जो स्पीड है लाइट की, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है दोनों ही मीडियम्स के लिए, और उनको आपस में इक्वल कर दिया है। अब जिस भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको पता लगाना है उसको आप एक साइड रखिए, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, n2 into v2 is equals to n1 into v1। और अगर आपको n2 का पता लगाना है तो आप कैसे लिखेंगे, n1 v1 upon v2, ये हो जाएगा n2 का वैल्यू। अगर n1 का पता लगाना है तो आप लिखेंगे n2 v2 upon v1। तो इससे आप लोग बहुत आसानी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का पता लगा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। और यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन रहना चाहिए, दोनों ही मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एयर, साथ में स्पीड ऑफ लाइट उन मीडियम्स में क्या क्या है ये आपको गिवन रहेगी। तो आप बहुत आसानी से एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम पता लगा सकते हैं। अब अगर आप लोगों को ये पता लग जाए कि जिस मीडियम के अंदर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी वहां पर स्पीड जो होगी लाइट की उस मीडियम के अंदर वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को कॉन्स्टेंट रखना है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट रखना है तो अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की कम होनी पड़ेगी, तभी वो कांस्टेंट रह पाएगा। मान लो आप ऐसे लिख रहे हो 6 into 2 is equals to 12, ये 6 into 2 is equals to 12 है। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से लिखना है, आप मान लो 6 की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, आप 6 की जगह मान लो एक और तरीका है 6 into 2 is equals to 12, तो 12 ही अगर आपको लाना है लेकिन इस बार प्रोडक्ट अलग होना चाहिए, आपको मल्टीप्लीकेशन करने की जो वैल्यूज है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो आप 3 into 4 12 भी तो लिख सकते हैं, आप 6 into 2 is equals to 12 भी लिख सकते हैं, आप 3 into 4 is equals to 12 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 6 की वैल्यू को घटा करके क्या कर दिया, आपने 3 कर दिया, और 2 की वैल्यू को बढ़ा करके आपने 4 कर दिया। तो आपने पहले 6 into 2 is equals to 12 लिखा था, बाद में आपने 3 into 4 is equals to 12 कर दिया, 6 की वैल्यू को कम करके आपने 3 कर दिया, 2 की वैल्यू को बढ़ा करके आपने 4 कर दिया। तो यहाँ पर आपको अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको एक की वैल्यू अगर बढ़ानी है तो दूसरे की घटानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मीडियम का वैल्यू बढ़ता है तो उसका मतलब है कि उस मीडियम के अंदर स्पीड की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर आप इसी बात को फॉलो करते रहें तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, और आप बहुत आसानी से ये भी बता देंगे कि कौन से मीडियम में ट्रैवल करते वक्त जो लाइट की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स नॉर्मल होती है और कब उसकी अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो म्यू है यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और फॉर्मूला हमारे पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसकी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको कांस्टेंट रखा था, सिमिलरली एक और कांस्टेंट भी होता है, और यहाँ पर कांस्टेंट होता है म्यू जो है, मान लो कोई सा भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर जो एंगल बनाया जा रहा है विथ नॉर्मल टू द सर्फेस, ये साइन ऑफ एंगल इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ये भी इसका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होता है, ये भी आप याद रखेंगे तो आप टुवर्ड्स द नॉर्मल है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल है ये बहुत इजीली बता देंगे। यहाँ पर आप लोग आ जाओ पेज नंबर 173 पर और मेरी बात को और ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपके पास दो मीडियम्स है, एक एयर है एक ग्लास है, एयर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब एयर के अंदर जो एंगल बनाया जा रहा है विथ नॉर्मल टू द सर्फेस दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लास के अंदर जो एंगल बनाया जा रहा है विथ नॉर्मल टू द सरफेस ये आर वन है। एक सिचुएशन के लिए आप एक टाइम पर अलग अलग आप दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे। जिस वक्त लाइट एंटर कर रही है एज ए बी पर, तो उस वक्त वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। एंगल ऑफ इमरजेंस की सिचुएशन में वो आर टू होगा, रिफ्रैक्शन का जो एंगल होगा वो आर टू होगा। तो आप एक सिचुएशन के लिए एट अ टाइम एक वैल्यूज को लेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझो कि आपका एक मीडियम है वो एयर है, दूसरा मीडियम है वो है ग्लास। तो एयर के अंदर जो एंगल बनाया जा रहा है विथ नॉर्मल टू द सर्फेस, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसकी यहाँ पर वैल्यू दिखाई गई है आई वन। और ग्लास के अंदर जो एंगल बनाया जा रहा है विथ नॉर्मल टू द सर्फेस फर्स्ट सिचुएशन के अंदर, तो वहां पर जो एंगल है वो है आर वन, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एयर के अंदर एंगल बनाई जा रही है इसका आपको साइन वैल्यू लेना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन इज इनटू म्यू ऑफ ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके आपको इक्वल कर देना होता है एक दूसरे के। एक बार और आप सुन लो, आपने क्या किया बेसिकली, आपने एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाई, उसके बाद आपने देखा कि एयर के अंदर एंगल क्या बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है देखने के बाद आपने साइन ऑफ दैट एंगल पता लगाया, साइन ऑफ आई वन आपने ये पता लगाया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू म्यू ऑफ एयर, ये आपने दोनों पता लगाया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और इसको बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया किसके, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर टू। आर टू जो है वो ग्लास के अंदर बनाया जा रहा है, तो दूसरा मीडियम हमारा जो है वो ग्लास, तो इसीलिए हम लोग पहले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगा करके रख लेंगे और साइन ऑफ एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है इसको पता लगा करके रख लेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और इसको बराबर कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो इस बार आपने प्रोडक्ट क्या किया, इस बार आपने प्रोडक्ट किया है, एंगल पता लगाया है, उसकी साइन वैल्यू निकाली है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है विथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम और इसको बराबर किया है दूसरे वाले के साथ। दूसरे वाले केस में भी आपने सेम यही किया है, दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाया है, उस मीडियम के अंदर एंगल क्या बन रहा है विथ नॉर्मल टू द सर्फेस वो देखा है, उसकी साइन वैल्यू निकाली है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है और पहले वाले सिचुएशन में जो आपने साइन वैल्यू निकाल करके एंगल निकाली थी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल करके मल्टीप्लाई किया था आपस में, दोनों को इक्वल कर दिया है। और ये भी कॉन्स्टेंट रहता है, ये प्रोडक्ट जो है ये भी कॉन्स्टेंट रहता है, कौन सा प्रोडक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम और उस मीडियम के अंदर जो एंगल बन रहा है विथ नॉर्मल टू द सर्फेस उसकी साइन वैल्यू, इनकी प्रोडक्ट भी कॉन्स्टेंट रहती है। तो यहाँ पर भी अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वाली कम हो जाएगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो साइन ऑफ एंगल जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि अगर एयर की बात की जाए जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, तो इसमें जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब एंगल की वैल्यू बढ़ानी है तो इसका मतलब ये होगा कि जो एंगल ये नॉर्मल के साथ बना रही है इसकी वैल्यू ज्यादा है। और अगर बात की जाए ग्लास की, तो ग्लास के अंदर क्या हो रहा है कि म्यू की वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो हमें एंगल की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, एंगल की वैल्यू तभी कम होगी जब लाइट जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस सिचुएशन में लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल ट्रेवल करती है और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करती है। तो यही वो ट्रिक थी जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि आपको सिंपली ये याद रखना होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का कांस्टेंट रहता है जब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर एक बार और ध्यान से सुन लो, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहता है एक मीडियम का। हम लोग को सबसे पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, साथ में उस मीडियम के अंदर कौन सी एंगल बन रही है वो पता होनी चाहिए, जो भी एंगल बन रही है उसी एंगल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, उस एंगल को पता लगा के उसकी साइन वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि यहाँ पर ग्लास की बात की जाए तो ग्लास के अंदर फर्स्ट सिचुएशन में ए बी वाले एच की पर की बात करें, पहले सिचुएशन में यहाँ पर ग्लास की आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगा ली, सपोज कर लो आप उसको लिख रहे हैं एन जी से, तो एन जी आपने लिखा जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन, साइन आर वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे एन जी इंटू साइन आर वन इज इक्वल टू एन ए इंटू साइन आई वन। यहाँ पर जो एन जी है यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एन ए जो है यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, साइन आई वन है बेसिकली जो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहे हैं उसकी साइन वैल्यू। तो साइन आई वन आपने निकाला, साइन आर वन आपने निकाला और आपने क्या किया, आपने NA कर दिया जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, तो NA इंटू साइन आई वन इज इक्वल टू NG इंटू साइन आर वन, ये होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर कांस्टेंट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का और साइन ऑफ एंगल जो वहां पर उस टाइम पर उस मीडियम में बन रहा है विद नॉर्मल टू द सर्फेस। तो कांस्टेंट आपने क्या रखा है यहाँ पर, आपने कांस्टेंट रखा है प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, तो NG इंटू साइन आर वन जो है ये कांस्टेंट रहेगा और इसको आप दूसरे सिचुएशन के साथ, दूसरे वाले मीडियम के साथ इसको इक्वल कर सकते हैं। तो जब भी कभी मान लो NG की जगह कोई और मीडियम होगा, उसकी अगर ऐसी होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी कम होगी तो एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब कम करनी होगी एंगल की वैल्यू तो लाइट को टूवर्ड्स द नॉर्मल ट्रेवल करना पड़ेगा, अगर हमें एंगल की वैल्यू बढ़ानी है तो लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एंगल के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहता है वो भी बता दिया, स्पीड के रिस्पेक्ट में किस तरीके से कॉन्स्टेंट रहता है वो भी बता दिया। तो दोनों ही आप लोगों को चीजें याद रखनी है, इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेंगे, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने जो आज पढ़ा है आपको उसे रिवाइज करना है, कहीं पर आपको कोई डाउट्स आ रहे हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।